हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा आज अपने पेपर मेरी टाइम हिस्ट्री MSHA 522A के यूनिट 5 के ट्रेड इन कॉटन सिल्क टेक्सटाइल पर आपके भी चर्चा करूंगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो व्यापारिक संबंध है बहुत प्राचीन काल से ही अनेक देशों के साथ रहा है और इन देशों में पश्चिमी देशों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इवन चाइना जैसा देश भी सम्मिलित था और बहुत बड़े तौर पर भारत का जो व्यापार है वह स्थल मार्गों और समुद्री मार्गों से किया जाता था। जहां तक सूती वस्त्र उद्योग और सिल्क वस्त्र उद्योग का संबंध है, इस संबंध में भी हमारे पास अनेक ऐसे सोर्सेज हैं जो ये मुझे इन्फॉर्म करते हैं, जो हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि भारत का जो व्यापारिक संबंध है बहुत ही सुदृढ़ रूप से देशों के साथ चलता था, विभिन्न देशों के साथ चलता था। आइए इसकी चर्चा हम शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोर्सेज की बात करेंगे। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोर्सेज को देखें तो ऐसा लगता है कि भारत में इस समय भी सूती वस्त्र बनाए जाते थे, सूती कपड़े बनाए जाते थे। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से एक चांदी का पात्र मिला है जिसपे सूती वस्त्र का एक टुकड़ा लगा हुआ है और यह टुकड़ा बिल्कुल लाल कलर का है। और जब वैज्ञानिकों ने इसे जांच किया, इसको जांचा परखा तो यह पता चलता है कि यह सूत जंगली कपास का बना हुआ न होकर के डोमेस्टिकेटेड है, अर्थात इसे कृषि के द्वारा उत्पादित कपास से बनाया गया है। इस संबंध में पिगट महोदय और भी बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जो निर्मित वस्त्र है वह सिंधु नाम से जाना जाता था और यूनान का जो सिंदोह शब्द है वो इसी शब्द से लिया गया प्रतीत होता है। और उनका ये भी मानना है कि संभवतः इस समय सूती वस्त्र का निर्यात भी किया जाता था। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो सैंदो सभ्यता से छौम वस्त्र या लिलन का कोई अवशेष नहीं मिलता है, लेकिन इसको सुमेरियन सभ्यता में इसका प्रयोग किया जाता था और इस आधार पर पिगट महोदय का मानना है कि संभवतः सैंधव लोग भी इसका उपयोग जानते होंगे। इसके साथ इंडस वैली के अलावा अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें या वैदिक काल की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि इस समय भी अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास हो चुका था और इन विभिन्न उद्योगों में कपड़ा उद्योग भी एक प्रमुख उद्योग हुआ करता था, क्योंकि हम लोगों को कपड़े बनाने का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो कपड़ा बुनने वाली महिलाएं हैं उनकी तुलना रात और दिन से की गई है। और तो और यहाँ ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसमें कपड़ा चुराने वाले चोर का भी उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ जुलाहे का रेफरेंस मिलता है ऋग्वेद में, जिसके लिए वाय शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है। जुलाहे के ढरकी के लिए ऋग्वेद में तसर शब्द प्रयोग किया गया है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल में भी या वैदिक काल में भी वस्त्र उद्योगों से लोग परिचित थे। सूती वस्त्र के साथ साथ इस समय ऊनी कपड़े भी अधिक पहने जाते थे और खासतौर से जो सिंधु प्रदेश था उसका जो ऊन था वो काफी अच्छा माना जाता था। इसके अलावा हम लोग को उत्तर वैदिक काल में ऐसा पता चलता है कि इस समय छौम के भी कपड़े बनाए जाते थे। सन का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऐसा लगता है कि इस समय सन के कपड़े बनाए जाते थे। तो बहुत पूर्व काल से ही हम लोगों को इस प्रकार जो सूती वस्त्र है उसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे भी जब हम आते हैं तो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, जबकि बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है, जैन धर्म का उदय हो रहा है, उस समय भी हम लोगों को दिखाई देता है कि इस समय उद्योग और व्यापार बहुत ही अच्छी अवस्था में आ चुके थे। और अगर हम जातकों का रेफरेंस देखें तो लगभग जातकों में हम लोगों को 18 प्रकार की श्रेणियों का रेफरेंस मिलता है और ये श्रेणी किसी न किसी उद्योग या व्यापार से जुड़ी हुई थी और इसका उल्लेख रिच डेविज महोदय ने किया है। हालांकि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जातक में सभी श्रेणियों का उल्लेख एक साथ नहीं मिलता है, लेकिन जितने भी जातकों में श्रेणियों का रेफरेंस है उसके आधार पर रिच डेविज ने 18 श्रेणियों का उल्लेख किया है। और इन 18 प्रकार के जो उद्योग है उसमें वस्त्र उद्योग भी बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई देता है। और 600 BC के आसपास हम लोगों को सूती, ऊनी, रेशमी सभी प्रकार के वस्त्र निर्मित किए जाने का रेफरेंस मिलता है और नगर के बाहर बुनकरों की बस्ती होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है उस समय हमको एक विस्तृत वस्त्र उद्योग का पता चलता है। इस समय प्रायः हमने आपको पहले ही बताया कि सूती, ऊनी, छौम, रेशमी सभी कपड़े बनाए जाते थे और अधिकतर परिवारों में सूत काता और बुना जाता था। और इस बात का रेफरेंस मिलता है कि नए ब्रह्मचारी को उसी दिन का बुना हुआ कपड़ा पहनने को दिया जाता था। इसके अलावा बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं जिससे भी हमें इन प्रकार के वस्त्र उद्योग की सूचना मिलती है, जैसे महावग। महावग में भी हम लोगों को छौम, कपास, रेशम, ऊन और सन का रेफरेंस प्राप्त होता है। और मिलिंदपन, जहाँ पे 75 व्यवसायों का रेफरेंस हम लोगों को उपलब्ध है, वहाँ से भी कताई और बुनाई के अलग अलग शिल्प की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगर कपास का सबसे प्राचीन उल्लेख देखा जाए तो पाणिनि के द्वारा किया गया, जिसका लगभग जो समय है वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का है। और हेरोडोटस ने लिखा है कि भारतीय रुई के कपड़े पहनते थे और भारत की रुई बहुत सफ़ेद होती थी। और एरियन भी कहीं ना कहीं उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए हमको दिखाई देता है। एरियन कहता है कि भारत की कपास बहुत चमकीली और सफ़ेद होती थी। और हमारे जो स्मृतिकार है मनु ने भी लिखा है कि इस समय ब्राह्मण विद्यार्थी का यज्ञोपवीत रुई, क्षत्रिय का छौम और वैश्य का ऊन से होना चाहिए। बौद्ध युग के पश्चात अगर हम मौर्य युग तक आए, मौर्य युग की बात करें, तो मौर्य युग में भी हम लोगों को अर्थशास्त्र से पता चलता है कि इस समय तक वस्त्र उद्योग का बहुत अधिक विकास हो चुका था और यहाँ पे हर प्रकार की किस्म के वस्त्र बनाए जाते थे, चाहे वो छौम के हों, चाहे रेशम के हों, चाहे कपास के हों, ये सभी प्रकार के जो वस्त्र बनाए जाते थे। और इस समय तक आते आते हम लोगों को भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात की सूचना भी मिलना शुरू हो जाती है। जैसे पेप्लस में ये लिखा हुआ है कि बंगाल का जो मलमल है वह विदेशों को भेजा जाता था। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हमारे रेफरेंस हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिससे हम लोगों को ये सूचना मिलती है कि इस समय कपड़ा बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग था और कपड़ा बनाना एक बहुत विशेष प्रकार की कला थी। और ऐसा भी रेफरेंस मिलता है कि सूती कपड़े भारत से निर्यात किए जाने लगे। अगर वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देखें तो मथुरा, वाराणसी खासतौर से कपड़ा उत्पादन का प्रमुख नगर था। आप देखते हैं कि आज भी जो बनारस का सिल्क है अभी भी बहुत फेमस है और उसको न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी स्थानों में भेजा जाता है। तो इस प्रकार कई ऐसे नगर थे जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे और जहाँ से इनका निर्यात किया जाता था। मौर्य युग में आप देखते हैं तो रेशमी वस्त्र उद्योग का भी विकास बहुत तेजी से होता है। और कई बार पाणिनि और मनु के द्वारा हम देखते हैं कि इस वस्त्र के विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे पाणिनि ने रेशमी वस्त्र को कौशेय कहा है और इसके साथ ही साथ मनु ने रेशमी वस्त्र या कौशेय की सफाई की विधि का भी उल्लेख किया है। बौद्ध ग्रंथ थोड़ा पीछे चलें तो बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में ये लिखा हुआ है कि एक भिक्षु को रेशमी वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार अगर तत्कालीन साहित्य का रेफरेंस हम देखें तो रेशम के लिए अलग अलग नाम प्रयोग किए गए हैं और साथ ही साथ रेशम के साथ सूती वस्त्र का भी निर्यात किया जाता था। और अगर आप देखें तो जिन भी वस्तुओं का भारत से व्यापार किया जाता था, भारत से निर्यात किया जाता था, स्पेशली उसमें सूती वस्त्र तो थे ही, साथ ही साथ रेशमी वस्त्र भी बाहरी देशों को भेजे जाते थे। रेशमी वस्त्रों को कौशेय कहा जाता था, मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशमी वस्त्रों को कौशेय कहा जाता था। और मौर्य काल तथा उसके परवर्ती साहित्य में रेशमी वस्त्र के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे पत्रोण, चीनपट, चीनांशुक, कीटज, पट, पट्टांशुक, चीन कौशेय, ये सभी जो है ये रेशमी वस्त्र के लिए प्रयोग किए जाते थे। कौटिल्य से ज्ञात होता है कि पत्रोण किस्म का रेशमी उत्तरी बंगाल और असम में बनाया जाता था। भारतीय और चीन का रेशम यहाँ से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तक ले जाया जाता था। इसके अलावा कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि बुनाई के अध्यक्ष को इस काम में अधिकतर अनाथ स्त्रियों को लगाना चाहिए, और मिलिंदपन से ये सूचना मिलती है कि एक स्त्री ने स्वयं रुई को धुना, उसको फिर दबाया, उसको पीटा, उसके टुकड़े किए और फिर कपड़ा बुना। तो इससे जानकारी मिलती है कि संभवतः वस्त्र उद्योग में लोग काफी निपुण होते थे और हर प्रकार के कार्य उन्हें करना आता था। इसके साथ ही हमको ये भी पता चलता है कि भारत में कपड़े रंगने का जो उद्योग है वो भी बहुत ही उन्नत अवस्था में था, और अनेक सूत्रों से ऐसा रेफरेंस मिलता है कि अनेक रंग का प्रयोग कपड़े रंगने के लिए किया जाता था, और इसलिए हम लोग को ऐसा रेफरेंस मिलता है कि लाख की खेती की जाती थी। लाख या रंगने और स्त्रियों के अलंकरण में काम आता था। रंग बनाने वाला और रंगने वाला दो अलग अलग व्यक्ति होता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि यदि रंगरेज किसी व्यक्ति का कपड़ा गिरवी रख दे या बेच दे तो सरकार को उस पर 12 पड़ जुर्माना करना चाहिए। किस रंग का कपड़ा रंगने के लिए उसे कितने दिन देने चाहिए उसका भी विवरण अर्थशास्त्र में मिलता है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र से सूचना अवश्य मिलती है कि भारत में वस्त्र रंगने का उद्योग अत्यंत विकसित हो चुका था और उसकी प्रसिद्धि पश्चिमी देशों तक हो चुकी थी। इसके अलावा अगर हम और आगे चलें तो ये देखते हैं कि करीब करीब गुप्तकाल और गुप्तकाल के पश्चात भी ये जो वस्त्र उद्योग है उसके संबंध में जो यहाँ के कारीगर थे वो बहुत ही उन्नत थे। अमरकोश से पता चलता है कि गुप्तकाल में जो धनी व्यक्ति हैं बहुत बारीक और निर्धन व्यक्ति मोटा कपड़ा बनाते थे, और मोटे कपड़ों से प्रायः तंबू या पर्दे आदि बनाए जाते थे। इसके अलावा जो ऋषि मुनि होते थे वह वृक्षों की छाल या जो जानवर होते थे उनके खाल के वस्त्र पहनते थे। रेशमी कपड़े के बुनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका वर्णन हम लोगों को अमरकोश से मिलता है, और यह जो रेशम है वह चीन से आयात किया जाता था, और मंदसौर अभिलेख में भी रेशम के जुलाहों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि इस समय यह उद्योग पर्याप्त उन्नत अवस्था में था और इसमें बहुत सारे व्यक्ति भी लगे हुए थे। इस समय जो कपड़े की रंगाई की जाती थी या उस पर कसीदाकारी की जाती थी उसकी भी जानकारी हम लोगों को मिलती है हमारे भारतीय स्रोतों से, और ऐसा लगता है कि इसमें कई प्रकार के डिज़ाइन बनाई जाती थी। जैसे आप देखिए, ऐसा रेफरेंस मिलता है कि सादा रंगाई के साथ साथ कपड़े में लहर या बुंदकी भी डाली जाती थी, और इसके साथ ही साथ बहुत कपड़ों पर हंसों की जो पंक्तियाँ होती थी या फूल भी उस पर छापे जाते थे। तो इस तरह के रेफरेंस भी हम लोगों को मिलते हैं। अगर बात की जाए गुप्तोत्तर काल में, तो गुप्तोत्तर काल में खासतौर से जब हम वर्धन डायनेस्टी की बात करते हैं उस समय का भी जब हम युग देखते हैं तो उस समय भी हम लोगों को वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में दिखाई देता है, खासतौर से जो सूती वस्त्र उद्योग है या रेशम वस्त्र उद्योग है। और ऐसा लिखा है बाण्य हर्षचरित में कि राजश्री ने अपने विवाह के समय छूमा, रुई, दुकुल यानी छाल का जो रेशम होता है, लाला तंतु, मलमल और नेत्र रेशम के वस्त्र बनाए थे। इसके साथ ही साथ वेन सॉन्ग भी इस समय भारत के सूती और रेशम वस्त्र उद्योग की जानकारी देता है। वह लिखता है कि भारत में रेशम, रुई, छुमा और ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं। हर्षचरित में रंगीन वस्त्र और फूलदार रेशम का भी उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही साथ एक विद्वान है शांतिदेव ने एक बुक लिखी है 7वीं शताब्दी ईस्वी में, शिक्षा समुच्चय से यह हमें मालूम चलता है कि इस समय वाराणसी श्रेष्ठ रेशम के लिए प्रसिद्ध था और पुण्य देश छुमा या छौम के कपड़े के लिए श्रेष्ठ माना जाता था। वेन सॉन्ग भी जानकारी देते हुए कहता है कि मथुरा में बढ़िया किस्म का धारीदार सूती कपड़ा बनता था। उसने ये भी लिखा है कि कश्मीर में सफ़ेद लिलन बनता था। लिलन आजकल बहुत फेमस है, लिलन आप शायद उसे जानते भी, वे टोटली सूती कपड़ा होता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है, बहुत ही ठंडा आपको लगेगा उसको पहनकर। तो ये लिलन जो बहुत ही प्राचीन समय से भी भारतीयों को पता थी। हर क्षेत्र में भी ये लिखा हुआ है कि इस समय कामरूप में बहुत बढ़िया कपड़ा बनाया जाता था। वहाँ के शासक ने रेशम और छुमा से बनाया कपड़ा छींटदार कपड़े हर्ष को उपहार में भेजे थे। पूर्व मध्यकालीन जो अरब यात्री है सुलेमान भी बंगाल के मलमल के संबंध में लिखता है। वह लिखता है कि यह इतना महीन होती थी कि अंगूठी के बीच से इसका पूरा थान निकल सकता था। इसी के साथ ही साथ एक अन्य मुस्लिम यात्री है इब्न खुरदवा, उसने भी बंगाल के कपड़े की प्रशंसा की है। अल इदरसी भी कहता है कि मुल्तान वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। मानसोल्लास में भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मुल्तान गुजरात कलिंग में बहुत अच्छा कपड़ा बनाया जाता था और खास तौर से कोंकण प्रदेश मालवा और मदुरा भी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। इसमें यह भी लिखा है कि भड़ोज के बने हुए वस्त्र इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें बरोज नाम से जाना जाता था। खम्बात में बना कपड़ा खम्बायात कहलाता था। मध्य देश चुनरी के लिए प्रसिद्ध था और एक चीनी यात्री है चाओजुकुआ, उसने गुजरात में छींट बनाए जाने की जानकारी दी है और उसके अनुसार मालाबार में छींट और सफ़ेद सूती कपड़ा बनाया जाता था। मार्कोपोलो ने भी मालाबार के बढ़िया सूती वस्त्र का उल्लेख किया है। चाओजुकुआ ने लिखा है कि चोल राज्य में भी सूती और रेशम रंगीन रेशम वस्त्र बनते थे। अगर हम संगम साहित्य की भी चर्चा करें तो संगम साहित्य से भी यह पता चलता है कि खासतौर से जो तमिल देश है वह बहुत ही आर्थिक दृष्टि से संपन्न था और यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य कृषि के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य बहुत उन्नत अवस्था में थे। अगर हम संगम साहित्य का अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि चोलों के समय में वस्त्र उद्योग एक बहुत प्रमुख उद्योग हुआ करता था और यहाँ पर सूती रेशमी अनेक प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था और खासतौर से जो चोलों की राजधानी है उरायवुर वह सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी। यहाँ पर सूत काटने का काम स्त्रियाँ करती थीं और ऐसा रेफरेंस मिलता है कि इस समय बेलबूटेदार रेशमी कपड़ों का भी निर्माण किया जाता था। सूती वस्त्र की जो क्वालिटी है उसके बारे में ऐसा रेफरेंस मिलता है कि सांप के केचुल या भाप के बादल की तरह महीन होते थे और उनकी कताई इतनी अच्छी होती थी कि आंखों से धागे दिखाई नहीं देते थे। तो आप सोचिए कितने फाइन क्लास का जो सूती वस्त्र यहाँ पे बनाया जाता था। और इस रेफरेंस से पता चलता है कि चोलों के समय में भी वस्त्र उद्योग बहुत ही उन्नत अवस्था में था। इसी के साथ मार्कोपोलो ये भी लिखता है कि वारंगल में भी बढ़िया सूती कपड़े बनाए जाते थे और इसके साथ ही साथ बहुत अन्य प्रकार के जो वस्त्र हैं उनका भी रेफरेंस इसमें मिलता है। जैसे इसमें ऐसा रेफरेंस मिलता है कि सूती और रेशमी वस्त्र के अलावा भेड़ के बकरी के ऊन के भी जो वस्त्र है वो बनाए जाते थे। तो इन रेफरेंस से पता चलता है कि किस प्रकार जो भारत का वस्त्र उद्योग है बहुत ही उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं जिससे हमें इस जो सूती वस्त्र है या रेशमी वस्त्र है उसके आयात या निर्यात की भी सूचना मिलती है। जैसे जब हम मिलिंद पन्न का स्टडी करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि भारतीय जहाज मलय प्रायद्वीप चीन और पूर्वी समूह को जाते थे और भारत चीन से कच्चा रेशम रेशम के धागे और रेशमी वस्त्र आयात करता था। भड़ौच से रेशम के धागे निर्यात की जाने की जानकारी भी हम लोग को मिलती है। इसके साथ ही साथ एक ऐसे चीनी राजदूत का रेफरेंस मिलता है बैक्ट्रिया में जो बैक्ट्रिया का रहने वाला था। बैक्ट्रिया में रहने वाले एक चीनी राजदूत का रेफरेंस मिलता है जो वहाँ के बाजार में चीन के बांस और वस्त्र बिकते देखता है और पूछने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं भारतीय व्यापारियों द्वारा अफगानिस्तान के मार्ग से यहाँ पहुँचाई गई थी। इस प्रकार अगर आप देखें तो जो भारतीय वस्त्र है अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में पहुँचती थी। एक चीज़ और भी है कि भारत का जो बारीक मलमल हुआ करता था वह विदेशों में बहुत लोकप्रिय था। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको रोम के व्यापार की जानकारी दी थी क्लास में, मैंने भारत और रोम के व्यापार की जो संबंध व्यापारिक संबंध है उसके बारे में विस्तृत चर्चा क्लास में मैंने की थी और आपको मैंने बताया था कि भारत से रोम को बारीक मलमल का भी निर्यात किया जाता था और ये जो बारीक मलमल है वो वहाँ की रोमन स्त्रियों में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। और एक यूनानी लेखक उन रोमन महिलाओं की इसलिए आलोचना करता है कि वह जो नारियां हैं रोम की जो लेडीज हैं वह भारत का मलमल पहनकर अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करती थी, क्योंकि ये इतना महीन होता था कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट जैसा लगता था, और इसके प्रति जो रोमन लेडीज हैं रोमन महिलाएं थी उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता था, उनमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता था। तो इस प्रकार रोम जो है ख़ास तौर से भारत के मलमल को मंगाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऐसा रेफरेंस मिलता है कि कालिदास ने भी चीन के रेशम को रेशम का वर्णन किया है और इसका नाम उन्होंने चीनांशुक कहा है। कालिदास ने इसे चीनांशुक कहा है क्योंकि यह चीन से भारत को जो चीन से रेशम था वो भारत को भेजा जाता था और इसी वजह से कालिदास ने इसे चीनांशुक शब्द से पुकारने का काम किया है। इसके साथ अगर हम देखें तो जो भी व्यापार और वाणिज्य है उसमें कहीं ना कहीं जो ये चीन है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता था, क्योंकि भारत से जो बारीक कपड़ा है चीन भेजता था और वह रेशम भारत को भेजता था, और यह जो रेशम चीन से आता था उसे अरब, पर्थिया या बैक्ट्रिया और पश्चिमी एशियाई देशों को भारत के द्वारा भेजा जाता था। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो जो भारत का वस्त्र उद्योग है या रेशम जो उद्योग है बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। हालांकि रेशम भारत को चीन से मंगाना पड़ता था लेकिन इसके बाद वह अन्य पश्चिमी देशों को इसका व्यापार करता था। पूर्व मध्यकाल में जब अरबों का आक्रमण हुआ और इसके बाद जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आए तो ये संभव है कि उस समय कहीं ना कहीं जो राजनीतिक अस्थिरता है वह भारत में उपस्थित हुई और उसने कहीं ना कहीं कृषि के साथ साथ भारत के जो उद्योग और व्यापार है उनको भी अवश्य प्रभावित किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर के थ्रू आप अपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो प्रायः 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और इस पर शॉर्ट टिप्पणी प्रायः पूछी जाती है, तो आप इसको उस लिहाज से तैयार करिएगा। थैंक यू।